18 अप्रैल 1967 का रात पूछा में बैठे हो और किसके इंतजार में बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, शिव बाबा की याद में बैठे हैं, बाप दादा की इंतजार में बैठे हैं। ठीक है, याद तो शिव बाबा को ही करना है। इस समय बाप दादा का इंतजार है, इस समय इसकी केबिन में बाप दादा का इंतजार है। माना बाप कौन हुआ, दादा कौन हुआ? इंतजार उसका होता है जो मौजूद नहीं रहता है। शिव बाबा को याद करना है वो तो ठीक है, इंतजार इसलिए कहा कि 67 में शिव बाप जिस ब्रह्मा तन में आते थे, बल माँ का पाठ बजाते थे, तो भी बूढ़े तन में होने के कारण बाबा कहा जाता, और इंतजार इसलिए कहा शिव बाप दादा ब्रह्मा के तन में आते, राम बाप के तन में नहीं आते। वो पाठ भविष्य में चलने वाला था, इसलिए बोला इस समय बाप दादा का इंतजार है। माना बाप राम बाप और दादा कृष्ण की सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, दोनों कंबाइंड होकर के जब पाठ बजाते हैं तो बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि बाप को सवारी जरूर चाहिए, ब्रह्मा के तन में आते थे वो तो माँ का रूप था, जिनका इंतजार है बाप दादा का वो बिगड़ दादा की तो आ नहीं सकते। बाप और दादा इसलिए कंबाइंड कहा जाता है, ये ऊंचे से ऊंचे है बाप दादा, और इनकी सवारी कितनी साधारण है, असाधारण तन में नहीं, साधारण तन में। बाप कहते हैं मैं पतित देश में आता हूं, ये पराये रावण का देश है, ये कोई समझते नहीं है कि हम कोई रावण के पतित देश में। अभी तुम हो पावन बनने के देश में, तो पावन बनने का देश अलग हो गया, उस देश को कहा जाता है संगम। और युगों में ये बातें बोलने की नहीं होती हैं। इस संगम युग का सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जब संगम युग को भूलते हो तो मुरझाए जाते हो। जब समझते हो संगम युग पर है तो खुशी आ जाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, अभी हम घर जाते हैं ये याद रहे तो भी खुशी आ गई। भगवान पढ़ाते हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, गॉड फादर स्टूडेंट बनावेगा तो जरूर देवी देवता बनाते हैं। अंदर खुशी हो और बाप की याद रहे, साथ भी रहे कि हमारी कहीं भूल चूक न हो जाए, तो अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है, अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी। अगर रजिस्टर खराब हुआ तो दुख फील होता रहेगा, बड़ी मेहनत है। स्त्री को पुरुष का भान, पुरुष को स्त्री का भान, ये देह भान मिट जावे इसमें बड़ी भारी मेहनत है। गंदा विवाह तो इसीलिए करते हैं कि हम पवित्र रह करके दिखावेंगे। आदत तो पड़ी नहीं है, परंतु जो इकट्ठे रहते आए हैं स्त्री पुरुष, उनको तो फिर जास्ती मेहनत लगती है। अगर वो पवित्र रहे तो सर्विसेबल तीखे भी हो जाए, ऐसे फिर ऊंचे पद पा सकते हैं। उनको बाबा की आफरीन है, कुमार कुमारी तो रह सकते हैं, बल कहेंगे कि कुमार कुमारी भी खराब हो जाते हैं। इस अवस्था में अगर अडोल साक्षी होकर के ड्रामा की ढाल पर चले, शरीर निर्वाह भी करे, ईश्वरीय सेवा भी करते रहे, तो पद बहुत ऊंचा पा सकते। जैसे आगम निगम कहते हैं कि प्रोग्राम बनाता हूँ, गांव गांव में पैदल सर्विस करता जाऊं, उन भाइयों के नाम बताए, अब आगम निगम वेद शास्त्रों को कहा जाता है। वेद ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं, उन वेदों की ऋचाओं का फिर शास्त्रों में व्याख्यान दिया जाता है। तो कहा जाता है आगम निगम, ये दो भाई हो गए, आगम जो आगम में है, जिनकी गहराई को सामान्य मनुष्य नहीं पा सकते, वो है मुरलियां वेद की भाषा में। मुरली का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक और बाप की प्रत्यक्षता वर्ष आने तक कोई को पता नहीं था ये मुरली के महावाक्यों का असली अर्थ क्या है? तो उन महावाक्यों को कहा जाता है अगम। फिर बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में उस मुरली का रहस्य खुलता है, जो व्याख्या निकलती है वो कही जाती है निगम। उनका प्रोग्राम बताया, वो अगम निगम कहते हैं कि गांव-गांव में जाकर के प्रोग्राम बना करके पैदल सर्विस करता जाऊं, डर की तो कोई बात नहीं, ऐसी सर्विस करते रहे तो बहुत ऊंचे पद पा सकते। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई हद में आगम निगम के भाई बैठे थे, शिव बाबा ने उनका निमित्त बेहद की बात बताई थी कि राम कृष्ण की आत्माएं हैं, कृष्ण की आत्मा के द्वारा गीता सुनाई जाती है, गीता का रहस्य नहीं सुनाया जाता, और राम की आत्मा के द्वारा शिव बाबा टीचर बन करके उसे गीता के रहस्य बताते, वो रहस्य मंथन करके निकलता है। इसलिए बोला था कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तो मंथन करने से निकलता है। तो जब तक बाबा जीवित रहे मुरली के महावाक्यों का कोई मंथन नहीं हुआ, उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है, और उससे जो अमृत निकलता है, सार निकलता है, व्याख्या निकलती है, उसको कहा जाता है गीता ज्ञान अमृत। उस अमृत बरसाने वालों के नाम बताए, अगम और निगम। ब्रह्मा के मुख से वेद भाषा अगम, और राम बाप के मुख से उस अगम वेद भाषा का, वेद की ऋचाओं का व्याख्या का काम शुरू होता है, उसको कहते हैं निगम। ये अगम निगम मिलकर के गांवे गांवे में सेवा करते रहे, डर की इसमें कोई बात नहीं। डर की बात क्या बताई थी? जरूर राम के पीछे रावण पड़ता है, कृष्ण के पीछे कंस पड़ता है, फिर भी अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहे तो उनको डर की कोई बात नहीं। पैसे आदि की भी कोई बात नहीं है, पैसे आदि भी कोई से मांगने नहीं है, अगर कहें तो कहो हेड ऑफिस में भेज दो, कोई को मना भी नहीं करना है कि हम तुम्हारा नहीं लेंगे। ये तो ईश्वरीय बैंक है। ईश्वरीय बैंक में जितना ब्याज मिलता है उतना और कोई बैंक में ब्याज नहीं मिल सकता। तो समझाया है तब देते हैं, तो जरूर कुछ बीज बो ले, भारी कमाई हो जाएगी। तो ये गांवों गांवों की सर्विस का प्लान बहुत अच्छा है। दो तीन बच्चे हैं जिनको ये शौक है, कुरुक्षेत्र के लक्ष्मण को भी बहुत शौक है, लिखते हैं कि जिस्मानी सर्विस छोड़वाए दो तो मैं रूहानी सर्विस में लग जाऊं। दोनों स्त्री पुरुष जोड़ी हैं जो इस सर्विस में लगे रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर के योग में रहकर के सर्विस करते रहे तो उनकी महिमा बड़ी भारी निकली। बाबा को जोड़ियां बहुत चाहिए, क्यों जोड़ियां इसलिए चाहिए, इस विद्यालय का लक्ष्य ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी की जोड़ी बनाना। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, कोई सन्यासियों का ज्ञान नहीं है। उन जोड़ियों के लिए गवर्नमेंट से खर्चा भी मिल सकता है। एक ड्राइवर हो और उनके पास कोई किफायती गाड़ी मिल जावे तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी को साथ में लेकर चारों ओर चक्कर लगाते रहे। गांव गांव में फिरते रहे। एक दिन ऐसा भी निकलेगा ऐसा जो गांव गांव में चक्कर लगा देंगे, परंतु सर्विस का शौक चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बने हो तो तुमको अशरीरी होकर के बाप को याद करना चाहिए, इसमें तुम्हारी कमाई है। भक्तों की कमाई नहीं होती है, भक्त तो दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, यहाँ साक्षात्कार की बात नहीं, दर्शन की बात नहीं, यहाँ तो याद है। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं और ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। तो तुम्हारी कमाई होती है, जितना याद करेंगे उतनी कमाई। फिर भी बहुत बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। जब कमाई होती है तो जिनकी दुकान में बहुत कमाई होती है वो काब आराम नहीं करना चाहते, क्योंकि ग्राहक बहुत आते हैं तो आराम ही उड़ जाता है। व्यक्ति कमाई है, माया तो चक्कर लगा करके उल्टा सुल्टा काम कराती ही है। और तब तक तराती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था न बने। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर माया पीछा करना बंद कर देगी। कर्मातीत मन अब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, 63 जन्मों की उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब द्वापर को क्रॉस करके त्रेता में चढ़ना शुरू करते हैं तो पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं। उस समय कहेंगे कर्मातीत अवस्था, विकर्म बन नहीं सकता, ऊंचा ही ऊंचा उठते जाएंगे। बुद्धि नीचे नहीं जाएगी। विचार आदि भी बंद हो जाएगा क्योंकि शक्ति ऊपर चढ़ने की आदि हो जाएगी। इसको ऋषि मुनि भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कुंडलनी शक्ति जागृत होना। ऐसे कोई कुंडलनी शक्ति होती नहीं है। कि तुम्हारी असली याद का तेज है, इससे सारी शक्तियां ऊपर चढ़ती है। फिर माया कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करा सकती। तो माया भी तो बन जाते हो। ऐसी कर्मातीत अवस्था बनाने में बहुत सोए पड़े हैं। ऐसे सोने वालों को आगे चल करके मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो विनाश सामने खड़ा है। तुम देखते रहेंगे कैसे बांस गिरती है। वो तो बाद की बात है। उससे पहले भारत में खून की नदियां बहनी हैं। वहां विदेशों में बॉम्ब लगा करके एक दूसरे को खत्म करते रहे। वहां खून की नदियां नहीं बहेंगी और भारत में खून की नदियां बहती हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी होगी, मुसीबत सबसे ज्यादा भारत पर है। क्या दूसरे देशों के ऊपर इतनी मुसीबत नहीं आती? तो दूसरे देशों में इतना सुख भी नहीं होता है। अमेरिका में स्वर्ग होता है क्या? यूरोप में स्वर्ग होता है क्या? नहीं। भारत में ही स्वर्ग होता है और भारत में ही रौरव नरक होता है। तो दुख भी भारत में बहुत। कोई कोई भक्ति में बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। बाप समझाते हैं अब तो तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब इन संसद्धा की बातों पर क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो? वो भक्त से समझते हैं ये बच्चियां हमको क्या पढ़ावेंगी। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि इनको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। कोई पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, ऊंच मान मर्तबा वाले हैं, तो ज्ञान सुनते सुनते लड़ पड़ते हैं। क्योंकि देह भान बहुत है, इसलिए गायन है गरीब निवास, किसको मिलता है? गरीबों को मिलता है। गरीब ही यहाँ आते हैं, मल्टी मिलियनर तो उनकी बुद्धि में तो बैठ न सके। अगर उनकी बुद्धि में भी बैठ जावे तो आवाज निकल जावे, परंतु ड्रामा में नूद नहीं है। कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि गरीब ही पहले निकलेंगे, गरीब साहूकारों से जास्ती मर्तबा पा लेते, उदान कार्ता अगर कोई धनवान निकल भी पड़े, मर्तबा वाला निकल भी पड़े, तो बाप कहते हैं इनसे तो हमें काम लेना है। जो काम लेना है वो काम निकल जाता है, फिर उनकी बुद्धि माया खराब कर देती है। तो फायदे में कौन हुए, गरीब हुए या धनवान हुए? गरीब जन जन्मांतर का पाए लेते हैं। बाप कहते हैं कोई कितना भी कामी हो, पतित हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भगवान की ओर से माफ किया जाता है, परंतु अहंकारी को माफ नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझ करके मेरे को याद करो। अगर देह अहंकार रह करके मेरे को याद करेंगे तो एक तो याद ही नहीं आएगा। क्योंकि बाप है निराकार, निराकारी माना निरहंकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो ऐसा देह भान छोड़ने वाले खुद बनेंगे तो बाप जैसी अवस्था बच्चों की भी बनेगी। अच्छा, बच्चों को गुण नहीं, यह है प्रातः क्लास 21 अप्रैल 1967 का। रिकार्ड चलाए मुकड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कौन सा दर्पण है? तो ऐसे ही गीत गाए देते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं ये फिल्मी गीत जब बनाए गए थे तो उनकी बुद्धि को भी चलाने वाला बाप था, गीत बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। बाप उनका अर्थ बैठ करके समझाते। जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं तो कहते हैं कि हे प्राणी, मैं जो तेरे को ज्ञान दर्पण देता हूँ। इस ज्ञान दर्पण में तू अपने मुखड़े को देख ले। कितने पाप भरे हुए हैं, कितने पुण्य भरे हुए हैं, वो दर्पण में साफ दिखाई पड़ेगा। 84 जन्मों की हिस्ट्री ही क्लियर हो जाएगी। आत्मा पार्ट धारी है ना, उस पार्ट धारी को बेवकूफ कहा जाता है जो अपने पार्ट को नहीं जानता। बाप आकर अभी वह दर्पण देते हैं, इस दर्पण में तुम अपने 84 जन्मों को जान सकते हो। 84 जन्मों का मुखड़ा देख सकते हो, कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया। राक्षस का बजाया, साधु संत का बजाया, दैत्य का बजाया, मनुष्य का बजाया, अब बाप आत्मा को समझाते हैं कि ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बनाया हुआ है। धीरे धीरे आगे चल करके ये गीत बजाना भी बंद हो जाएगा। आगे चल के माने कब? एडवांस ज्ञान तक पहुंचने तक ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाप कहते हैं महावाणी महाभारत बिना सामने खड़ा हुआ है, सारी दुनिया का बिना सामने खड़ा हुआ हो तो गीत बजाना शोभेगा क्या? घर में मोहल्ले में आग लग रही हो और कोई ढोलक को मजीरा लेकर के बैठ जावे, गीत गाना शुरू लग कर दे तो कैसा लगेगा? इसलिए बाप कहते हैं कि जैसे जैसे तुम बच्चे समझदार बनते जाएंगे वैसे वैसे ये गीत आज बजाना बंद कर देंगे। बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। बाबा ने मुरली में कहा कि ये टैप रिकॉर्ड बाबा की वाणी क्यों की क्यों सुनाता है, इसलिए जिनके पास पैसे हैं वो टैप रिकॉर्ड अपने घर में रखें, खुद भी बाबा की एक्यूरेट वाणी सुने और दूसरों को भी सुनावे। परंतु बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया, वो टैप रिकॉर्ड तो रखे लेकिन उनका उपयोग किस बात में किया? गीत बजाने। बड़े अच्छे अच्छे गीत बनाए जो दुनिया वालों के कानों को लुभा ले। बंबई से फिल्मी कलाकार भी बुला लिए, उनके द्वारा गीत तैयार किए, परंतु ये सब बच्चा बुद्धि की बात है। इसलिए पहले से ही बता दिया कि धीरे धीरे ये गीत आदि बजाना बंद हो जाएंगे। इनकी तो दरकार ही नहीं है। हमारा तो राजयोग है शांति का, इसमें कोई आवाज की दरकार नहीं। ये कोई आर्टिफिशियल याद नहीं है। बच्चा माँ को याद करता है, माँ विलायत में गए हुए अपने बच्चे को याद करती है, बाप बेटे को याद करता है, तो कोई गीत सारंगी आदि बजा के याद करता है। गीत बजा के याद आती है क्या? ओरिजिनल याद के लिए कोई साधन की दरकार नहीं। तो उन गीतों की दरकार ही नहीं है, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अभी तुम यहां जब बैठते हो तो अपन को सिर्फ आत्मा समझो, आत्मा समझते हुए देहभान को छोड़ दो। समझो कि हम आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, स्टार मिसल है। मैं आत्मा स्टार रतुलती की मध्य में बैठा हुआ राजा के मिसल हूं, जो इस सारे शरीर रूपी राज्य का संचालन करता हूं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं, परंतु ये आत्मा का ज्ञान कोई में नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तो जिसके पास कोई स्पेशल चीज हो तो उसकी कदर करनी चाहिए ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं अपन को, आत्मा समझ मुझ बाप की याद में बैठना है। ये नॉलेज बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर के देते हैं। भारत में ही आकर के क्यों देते हैं? विदेशों में आकर क्यों नहीं देते? क्योंकि शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में नहीं ठहरता। मिट्टी माना देह अभिमान, कामी इस्लामी अरबियंस, क्रोधी क्रिश्चियंस यूरोपियंस, लोभी मुस्लिम, मुस्लिम धर्म खंड अलग है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान, इन्होंने कितने आक्रमण किए लोभ के वशीभूत होकर के भारत को तहस नहस किया। जैसे चोर डकैत होते हैं लोभ में आकर के कितने उल्टे पट्टे काम करते हैं, हत्याएं करते रहते हैं, तो इन विदेशों में मैं नहीं आता हूं, मैं भारत देश में आता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पवित्रता का बहुत बहुत मान्यता है, और दूसरे देशों में पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं है। यहां जितनी कन्या माताओं की प्योरिटी की संभाल होती है उतना दूर दूसरे देशों में संभाल नहीं होती है। तो मैं भारत को ही आकर के पवित्र खंड बनाता हूं, तो हमेशा अपन को समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। ऐसे करते करते शरीर से देह बाहर निकल जाएगा। इस बात में सारी मेहनत है। मैं आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती हूँ। आत्मा ही बजाती हूँ, और जो 84 जन्मों का पार्ट नहीं बजाते हैं वो आत्मा नहीं है, नहीं है। जिनकी 83 जन्म है, 82 जन्म है, कम जन्म है, वो पक्की आत्मा अपने को समझ नहीं सकती। अंत तक देह भांड में आ जाती है और अंत मते सो गति हो जाती। देह मिट्टी की याद आने से मिट्टी में मिल जाते। जितने भी दूसरे धर्म हैं, उनमें उनके फॉलोअर्स जब प्राण छोड़ते हैं तो शरीर को मिट्टी में दबाया जाता है, और भारतवासियों के शरीर को जलाया जाता है। माने भारतवासी अपने देहवान को खाक कर देते हैं, राख बनाई देते हैं, और विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ऐसा नहीं कर पाती। कुछ न कुछ देहवान की मिट्टी रह जाती है, इसलिए वो पूरे 84 जन्म नहीं ले पाते। तो हम सब आत्माएं इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, परंतु उन एक्टर्स के बीच में ऊंचे से ऊंचे एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है कि वो परमपिता परमात्मा भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु है कितनी छोटी सी बिंदी। ऐसे तो हम आत्मा भी छोटी सी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य चक्षु के देखा नहीं जा सकता। ये नई पॉइंट्स तुम अभी सुन रहे हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ जानते हैं, और उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है कि आत्मा छोटी बिंदी है और हम आत्माओं का बाप इस ड्रामा का मुख्य एक्टर है। तो ऊंचे से ऊंचे एक्टर है बाप। इन सब एक्टर्स के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर के बगैर तो ज्ञान नहीं दे सकते। शरीर द्वारा ही बाप बोल सकते हैं। अशरीरी होने से तो आर्गन्स अलग हो जाते हैं, आत्मा अलग हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुम देहधारियों का स्मरण करते हो, वहां तो परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल आदि का पता ही नहीं है। बस यूं ही कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं नामानुसार तुम जो नंबर वन में थे अभी लास्ट में आकर के तुम तमो प्रधान जरूर बनते हो, तो ये आत्मिक की स्थिति की अपनी अवस्था मजबूत रखनी है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठा दो, अमृत वेले उठते ही ये फाउंडेशन पक्का कर दो, कोई संकल्प ना आने पाए सिवाय मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती हूँ, आत्मा में ही ज्ञान है, ये ज्ञान कोई की बुद्धि में नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी उदा हुआ है, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेकर के पाठ बजाती रहती है। ये बहुत बहुत नई नई पॉइंट्स हैं, इन पर मंथन करते रहेंगे तो अनेक जन्मों की थ्योरी तुम्हारी खुलती जाएगी। एकांत में बैठ करके अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करो कि मैं आत्मा रूपी रिकॉर्ड कितना बंडर बोलू, एक छोटे से रिकॉर्ड में कितनी बातें भरी जाती है। पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे ग्रामोफोन के, एक रिकॉर्ड में एक ही गीत होता था 2-4 मिनट का, अभी टैप निकल पड़ा तो कितने गीत बज जाते हैं, फिर VCD निकल पड़ी और ही कई गुने भर जाते हैं, अभी DVD निकल पड़ा तो आत्मा उससे भी छोटा रिकॉर्ड है, इतना सूक्ष्म रिकॉर्ड और इतने जन्मों की हिस्ट्री भरी हुई है। तो ऐसी अपन से बातें करते रहो, मैं बाप से सुन रहा हूं, ये बाप की सुनाई हुई बातों की धारणा मुझे आत्मा में होती है, मुझे आत्मा में ये 84 का पाठ भरा हुआ है। वो रिकॉर्ड तो विनाशी होते हैं और मैं आत्मा अविनाशी पाठधारी हूं, ये बात अंदर में घड़ी घड़ी घूमना चाहिए। हम तमो प्रधान आत्मा से हम सत्व प्रधान बनते, साधु संत आदि तो सब भक्ति मार्ग के तमो प्रधान है, देह अभिमानी है, उनको ये आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। और फिर अहंकार देखो कितना है, उनको कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, परंतु वो क्या वो उन टाइटल्स को धारण करने वाले प्रैक्टिकल में है? टाइटल धराते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य, क्या 108 की माला बनाने वाले हैं? जो माला सब धर्मों में सिमरण की जाती है श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार, वो श्रेष्ठ आत्माओं की माला वो तैयार करते हैं क्या? उन श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। दूसरे धर्म वाले तो छोड़ो, विदेशों की तो बात ही छोड़ो, भारतवासी भी सब शंकराचार्य को नहीं मानते, तो फिर जगतगुरु कैसे हुए? जगतगुरु कब कहा जावे? जब सारा जगत 500-700 करोड़ मनुष्यों का जो भी जगत है वो सब ये स्वीकार करे ये हमारा सदगुरु। तो देखो कितने कितने बड़े बड़े लकब धारण करवाए लेते हैं। फिर क्या ये लकब धारण करने वाले हैं? है तो फिर भी थकी उनकी फिर माताएं जाकर के जब पैर धो करके पीती है। कितनी अंधश्रद्धा है। वास्तव में कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान हो नहीं सकती। ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंच से उस आत्मा भी अभी पाठधारी है और इस समय तो सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। आजकल जो जाति भक्ति करते हैं, साथ साथ बहुत पढ़ते हैं, उनका ईमान है, क्योंकि ये भक्ति का राज्य है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। अभी तुम ज्ञान लेने वाले कितने थोड़े हो और भक्ति मार्ग तो कितना बड़ा है। जहां देखो वहां भक्ति ही भक्ति है। अभी तुमको तो इस भक्ति से जैसे बात आती है, क्योंकि भक्ति दुर्गति है, तो जो दुर्गति को पाए हुए हैं उनसे की जैसे बात आती है, उसकी बात तो है तम प्रधान से सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, तो इस बात को अंदर में घोटना चाहिए कि हम क्या करें जो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाए। ज्ञान सुनाने और सुनने वाले बच्चे होने चाहिए, बाकी लवारी तो बहुत है। याद में रहते नहीं, अंदर में अंतर्मुखता भी तो होनी चाहिए। बुद्धि में रहे कि हमको तो बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। रावण भी क्या था? ब्राह्मण था, पंडित था। रावण के हाथों में क्या दिखाए जाते हैं? वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है कि माताओं को कहता था कि राम नाम जपने से सागर से पार हो जाएंगे, फिर दिखाते हैं गुड़िया पार हो गई और पंडित जी को पंडित पना सवार था, मुख से बोलने का अंदर से विश्वास था नहीं तो डूब गए। तो ऐसा लवारी नहीं बनना, ऐसे बहुत लवारी होते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुना लेंगे परंतु प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। यहां तो समझानी बहुत अच्छी है परंतु समझाने के साथ योग भी चाहिए। कोई तो सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण सारा दिन बाबा को याद नहीं करते, नहीं तो बाबा को चाट भेजना चाहिए, बाबा मैं इस समय उठता हूँ 21 अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा, परंतु बच्चे कुछ भी समाचार नहीं देते, ज्ञान की लगार बहुत चढ़ी रहती। योग में लाचारी दिखाते हैं, बल बहुत बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में बहुत कच्चे। योग में कच्चे होंगे तो कोई के ऊपर असर बैठ पड़ेगा ही। इसलिए सवेरे को उठना है और बाप को याद करना है। सवेरे का अमृत वेला फाउंडेशन का वेला होता है, जैसा फाउंडेशन पड़ जाएगा वो सारा दिन वैसी याद बन जाएगी। बाप को याद करते रहे, मंथन करते रहे, महिमा करते रहे, बाबा आप कितने मोस्ट बिलीवर्ड हो, ये ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है। इस विचित्र ड्रामा के राज को कोई भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में कितना तूफान है, परंतु न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। तो जो अपनी आत्मा को भी नहीं जानते, आत्मा के बाप परमात्मा को भी नहीं जानते, वो है जानवरों से भी बदतर। हम भी ऐसे ही थे, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है, इतनी दुर्दशा हो जाती है कि एकदम लंपट बन पड़ते हैं। अभी तुम ही तमो प्रधान बने, ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो कि आत्मा सत्व प्रधान होती है तो देवता होती है, तमो प्रधान बनती है तो लंपट बन जाती है, राक्षस बन जाती है, कोई को भी बोल सकते हो कि तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा सत्व प्रधान, आत्मा तमो प्रधान। अपन को सत्व प्रधान बनाना है तो पहले तो इसके लिए अपन को आत्मा समझना जरूरी है। कोई से भी बात करो, उनकी भ्रकुटी में आत्मा देखने की कोशिश करो। जो गरीब है उनके लिए तो और ही सहज है, साहूकारों को तो मान मर्तबे का झंझट बहुत रहता है, उनके लिए तो आत्म की स्थिति में स्थित होना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, बहुत धनवान के तन में आऊं, गोरे चिट्ठे के तन में आऊं, असाधारण तन में आऊं, तो क्या घाटा हो जाएगा। जो धनवान और मान मर्तव्य वाला तन होगा तो उससे धनवान ही मिल सकेंगे, और साधारण तन होगा तो उससे सब मिल सकेंगे। मैं ऐसे में आता हूँ जो न बहुत गरीब होता है, जो दर दर भीख मांगने वाला हो, और न बहुत साहूकार होता है। अभी तुम समझते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको ये शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनूं। बाकी बाबा हमारे धंधे आदि में खिचपिट है, ऐसा है वैसा है, इन बातों के लिए नहीं आया हुआ। बहुत करके यह बातें सुनाते रहते हैं, बाबा हमें पर्सनल बात करनी है, फिर अपने लौकिक धंधे रहोरी की बातें सुनाते रहेंगे, ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया। बाप कहते हैं मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, इस जन्म में ये बाटा घाटा तो तुमको सहन करना पड़ेगा, ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है जो पूरा करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें भविष्य 21 जन्मों की कमाई कमाने के लिए आया हुआ। ओम शांति।